राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन जारी, यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव राधा माधव राधा माधव
बहुत दिनों के बाद आप सब भक्तों का दर्शन। मैं क्या कह रहा है कि आप बंद करने के समय पर आए हैं। मैं भी मान रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसलिए केवल 15-20 मिनट प्रवचन करेंगे। 9:30 को हम समाप्त करेंगे और माइक भी बहुत ढीला है यहाँ पर। कंट्रोल में नहीं है। एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं, माइक और पत्नी में कोई फर्क नहीं है। यदि माइक बिगड़ा तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा और पत्नी बिगड़ गई तो जीवन फेल हो जाएगा। लेकिन एक है, ये माइक को बंद करने के लिए स्विच होती है। पत्नी को बंद करने के लिए स्विच नहीं होती है। दूसरी बात कि इसके सामने बोला जा सकता है, इतने करीब से पत्नी के सामने नहीं बोल सकते। क्यों प्रभु जी? देखिए अनुभव है प्रभु जी का, 30 साल का। और अंत में कह दूं कि यदि ये माइक बिगड़ जाए तो रिपेयर हो सकता है। सब लोग समझदार हैं। क्या समझे? खैर ये तो विनोद की बात है, बाकी आज की नारी संसार को बदल सकती है। नारी से ही एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है। मैं तो सोच रहा था क्या बोलूंगा। आइए, माताओं का समाज है इसलिए भगवान की एक बहुत सुंदर भक्त की वर्णन कथा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा वॉल्यूम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शनिवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर बहुत अच्छा उत्साह है यहाँ के भक्तों में। बहुत सुंदर भजन कीर्तन करते हैं, जोर जोर से गाते हैं, माइक की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आकर देखा तो माइक बंद था क्योंकि एक साथ सब लोग गा रहे थे। भक्तों भाव बहुत अच्छा है, कीर्तन भी बहुत अच्छा है, परंतु एक विधि होती है कीर्तन करने की। हमारे भारतवर्ष में और शास्त्र में वेदों में कीर्तन करने की विधि बताई गई है कि मान लीजिए जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी लोगों में जो भक्ति में आगे हैं और जो सुंदर गा सकता है उन एक व्यक्ति को कीर्तन करवाना चाहिए। एक बार एक लाइन गाएगा सबको सुनना चाहिए और सुनने के बाद फिर सब लोग गाएंगे एक साथ सबको नहीं, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो एक साथ दो भक्ति होगी। नवदा भक्ति जानते हैं आप, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि। तो यदि कोई गाने वाला एक लाइन गाता है तो हम सुनते हैं तो श्रवण भक्ति हो गई, और सुनने के बाद फिर गाते हैं तो कीर्तन भक्ति हो गई। परंतु श्रवण करना कोई नहीं चाहता है सब लोग। मैं भी गा रहा था मेरे साथ, गाना कोई अपराध नहीं है, परंतु आचार्यों की दी हुई विधि के अनुसार गाएंगे तो बहुत अच्छा है, उसमें आनंद और रस आ सकता है। तो कई दिनों के बाद, डेढ़ दो महीने के बाद हम सब मिले हैं। सबसे पहले आप सबके चरणों में क्षमा याचना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मैं आ सका। आप लोग राह देखते होंगे प्रभु जी आएंगे प्रवचन सुनाएंगे, परंतु कुछ कथा और कुछ तबीयत, कुछ जीवन के पाप नड़ रहे हैं इसलिए कमर में दर्द। लेकिन फिर भी आप सब भक्तों का प्रेम भगवान की विशेष कृपा है जिससे यहाँ पर आ सका। आज भी मुझे 7:30 बजे यहाँ पर आना था, परंतु डॉक्टर के पास चला गया तो 2 घंटा वहां पर निकल गए। तो आप सब हमें क्षमा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि प्रति शनिवार को यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम प्रारंभ करें। तो यहाँ पर माताओं की संख्या ज्यादा है, वास्तव में माता को ही हमारे शास्त्र में जननी कहा गया है। जननी का अर्थ होता है जनन करने वाली, उत्पन्न करने वाली। इस संसार में यदि स्त्री का स्थान न हो तो यह संसार ही नहीं बन सकता है। बिना स्त्री के यह संसार नहीं बन सकता है। भागवत के द्वितीय स्कंद में यह कथा आती है, ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाने के लिए, संसार में प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिया, निवृत्ति, प्रचेता, नारद इत्यादि 10 पुरुष जन्म लिए। 10ों को बुलाकर कहा कि आप विवाह करो, 1 by 1 एक के बाद एक 10ों लोगों ने कह दिया, पिताजी ब्रह्मा जी आप जो भी करने के लिए, हम जो भी बोलोगे वो करने के लिए तैयार है, परंतु हम विवाह नहीं करेंगे। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अमृत को छोड़कर ये संसार की फजीयत अर्थात विष को मांगने वाला तो बहुत बड़ा मूर्ख है। उससे तो अच्छा है ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्म में आचरण करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, यही श्रेष्ठ है। विवाह नहीं करेंगे और जो भी करना है बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हो रहा है, एक के बाद एक को उत्पन्न करते गए परंतु कोई विवाह, 10 पुत्र उत्पन्न किए, 10ों ने ना कह दिया। फिर शिव जी को उत्पन्न किया, शिव जी उत्पन्न हुए, रुद्र प्रकट हुए, कहा कि बेटा ये 10 लोगों ने कुछ नहीं किया, अब आप कुछ करो। शिव जी ने कहा पिताजी नो प्रॉब्लम। शिव जी आए और आकर सृष्टि उत्पन्न करने लगे, परंतु कैसी, भागवत में वर्णन है भूत पिशाच बिच्छू सांप और रुद्रगण, भूतों की सृष्टि उत्पन्न करने लगे। और हुआ ऐसा, शिव जी यहां पर ये ऐसी पृथ्वी उत्पन्न सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं और ये सब भूत पिशाच और रुद्र ये सब ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा कि मुझे मारने के लिए। शिव जी को अर्जेंट फोन करके बुलाया कि बेटा अब बंद करो, बहुत हो गया, अब आप सृष्टि मत करो, आप प्रलय का डिपार्टमेंट ले लो। उस दिन से ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रलय करने का डिपार्टमेंट दिया है, सृष्टि करने के लिए ना कह दिया। ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, अब क्या करें, ये सब लड़के लोग उत्पात मचा रहे हैं, यहां वहां दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई भी अपने जीवन में संसार में ध्यान नहीं दे रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सब लड़कों को सीधा करने के लिए स्त्री को जन्म कराना होगा, जब तक इनके जीवन में स्त्री नहीं आएगी तब तक ये सीधे नहीं होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजाओं से, एक भुजा से मनु महाराज और एक भुजा से शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहली स्त्री शत्रुपा को प्रकट किया और मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ और मनु और शत्रुपा से जो सृष्टि हुई उसे ही मानुज कहा जाता है। मनु से ये मनु मनुष्य जन्म लिए, ज माने जन्म और मनुष्य भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने जब स्त्री को उत्पन्न की तब जाकर ये संसार की सृष्टि आगे बढ़ी, बिना स्त्री के सृष्टि असंभव है, इसलिए स्त्री को जननी कहा जाता है। बहुत बड़ी जननी है, बहुत बड़ा भार है स्त्री के ऊपर और स्त्री की रक्षा करना एक राजा का, देश का और पति का धर्म होता है। और यदि संसार में स्त्री ठीक हो तो बहुत अच्छा है, यदि स्त्री बिगड़ गई तो यह संसार बिगड़ जाएगा। अर्जुन का सबसे बड़ी चिंता भगवत गीता में यही है, इसलिए गीता मैंने पहला अध्याय खोल कर रखा है। अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता और सबसे पहली चिंता भगवत गीता में ये नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मैं भूखे मरूंगा। सबसे पहली चिंता अर्जुन कर रहा है कि अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, यदि इस संसार में रहने वाली स्त्रियों के अंदर अधर्म प्रवेश कर लेगा तो सारी स्त्रियां दुष्ट हो जाएगी। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, बहुवचन में ये संसार की सारी स्त्री दुष्ट हो जाएगी। और यदि स्त्री दुष्ट हो गई तो जायते व स्त्री कैसा जन्म देगी, कैसी संतानों का जन्म देगी, जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर प्रजा का जन्म देगी। वर्ण संकर का अर्थ होता है अपने माता पिता की जो सेवा न करे, जो धर्म का पालन न करे, जो दूसरों को आदर न दे, केवल पापों में लगा रहे, इसे वर्ण संकर कहा जाता है। तो अर्जुन का ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ी चिंता है कि यदि स्त्री दुष्ट हो गई, यदि स्त्रियों में अधर्म आ गया तो वर्ण संकर प्रजा और वर्ण संकर प्रजा क्या करेगी। संकरो नरकायैव कुल ज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो हेशा लुप्त पिंडो तकः क्रिया। ये वर्ण संकर प्रजा यदि माता पिता ने अच्छे कार्य किए हैं और वे स्वर्ग में पहुंच गए परंतु उसकी प्रजा यदि अच्छी नहीं है, उसकी संतान यदि अच्छी नहीं है तो स्वर्ग में गए हुए माता पिता को वे नरक में भेज सकती है। और यदि स्त्री अच्छी है उनका संस्कार अच्छा है और अपने गर्भ से सुसंस्कृत पुत्र का जन्म किया, तो नरक में गए हुए अपने माता पिता को वह संतान वह पुत्र भगवान के धाम में बेच सकता है। इसीलिए पुत्र का अर्थ होता है पू नामक त्राइते। पू माने एक नरक का नाम है और त्र माने त्राण करना, उद्धार करना। वास्तविक पुत्र का अर्थ होता है जो अपने माता पिता को नरक में गए हुए नरक गामी माता पिता को त्राण कर दे, तार दे, भगवान के धाम में भेज दे, उसे पुत्र कहा जाता है। और ऐसा महान पुत्र अपने माता पिता को भगवान के धाम में भेजने वाला पुत्र तो इस संसार की और इस भारत वर्ष में रहने वाली जननी ही जन सकती है। विदेशों में क्या बच्चे पैदा करेंगे और क्या संस्कार देंगे? आज किसी और पुरुष के साथ तो कल और किसी पुरुष के साथ। भारतवर्ष में आज भी सुसंस्कृत स्त्रियां हैं, परंतु अब तो भारत की स्त्रियां भी बिगड़ रही हैं। पाश्चात्य देशों की संस्कृति को स्वीकार करके सब लोग बिगड़ रहे हैं। सोचते हैं कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, जींस पैंट पहनकर प्रगति कर रहे हैं, ये प्रगति नहीं है। हमारे वैदिक परंपरा में, वैदिक शास्त्र में जींस और टी शर्ट नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। क्या कभी आपने देखा कि गोकुल में गोपियों ने जींस और टी शर्ट पहना था? अब गोपियों से सबसे बड़ी चीज क्या है बताइए? गोपियों से बड़ी कोई स्त्री हो सकती है? तो हमें तो उसे आदर्श बनाना चाहिए कि अमेरिका वालों को जो नंगे घूमते हैं। भगवान के महान साक्षात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीर वरदार पद कमलम दास दासानंद। महाप्रभु अपनी पहचान गोपियों के दास के रूप में देते हैं कि मैं उस गोपियों का दास हूं। तो कभी सुना कि ये गोपियों ने पाश्चात्य देश की संस्कृति? आज तो लड़कियां स्त्रियां अपने बाल छोटे से छोटे करा देती हैं, बॉय कट, क्या कहते हैं, कट सर। मैं तो अद्भुत संसार चल रहा है आज, कलयुग का प्रभाव। आप कॉलेज में जाओगे तो पता चलेगा, कुछ लोग कॉलेज में होंगे तो पता है। कुछ लड़कियां बिल्कुल छोटे छोटे बाल और जींस पैंट और शर्ट पहनकर घूमती, पता नहीं चलता है लड़की है कि लड़का है। कभी कभी तो टेंशन, टीसी को भी टेंशन में आ जाते हैं, ये लेडीज से भी मैं क्यों चढ़ा, बाद में पता चलता है तो लड़की है। एक दो बार ऐसा हो भी चुका है। लड़की जो है लड़का बनना चाहती है और लड़के लड़के का नाम लेते हैं धोनी, पहले याद आता है। लंबे लंबे बाल रखते हैं और कान में, नाक में, यहां पर होठ में, क्यों प्रभु? लड़की लड़के बनना चाहते हैं, लड़के लड़की बनना चाहते हैं। भगवान दोनों की इच्छा पूर्ण करेंगे। आज तो सब विपरीत हो रहा है। स्त्रियों को स्त्रियों की मर्यादा में रहना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों की मर्यादा में रहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि यदि स्त्री अच्छी हो, यदि स्त्री में संस्कार हो, तो वास्तव में ये पूरे जगत को सुधार सकती है। स्त्री शक्ति कोई कम शक्ति नहीं है, ये मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और इसके सामने सब लोग झुकते हैं। अब देखो संसार में एक से एक राजा महाराजा, आजकल के लोगों की बात दूर रही। आज जो अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसमैन मानते हैं, बहुत बड़े सेठ होते हैं, या पूर्व के बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट राज राजेश्वर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करके आते थे, परंतु जैसे ही अपने घर पर पहुंचते थे अपना मुकुट अपनी पत्नी के चरणों में रख देते थे, अपनी पत्नी के चरणों में देखने मिलते थे। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, स्त्री के चरणों में रहता है। स्त्री बहुत बड़ी शक्ति है और स्त्री यदि सुधर जाए, स्त्री यदि भक्ति को स्वीकार करे, तो निश्चित इस संसार में आने वाले सारे पुरुष और पुत्र भक्त बनेंगे। क्योंकि स्त्री का समाज है, इसलिए कह रहा हूं। कभी कभी कुछ माताएं टेंशन लेती हैं, चिंतित होती हैं कि हमारे पुत्र और हमारे पति देव भक्त नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसे इसे सुधारें। कई लोगों का यह प्रश्न होता है, परंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम ठीक से भक्ति करेंगे, ठीक से भगवान के लिए भोजन भोग बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे और साधना करेंगे, तो निश्चित एक ना एक दिन हमारे साथ रहने वाले भक्त जरूर बनेंगे। भक्त ऐसी ही एक कथा श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में आती है। ये संपूर्ण कथा भागवत में तो नहीं है, अन्य पुराण में दी गई है। भागवत के नवम स्कंद में राजा नभग की कथा आती है। नभग के चार पुत्र थे जिसमें से सबसे छोटा था नाभाग, और नाभाग ऐसा पुत्र था, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी नीति का पालन किया है, नीति और धर्म का पालन करने के कारण उनको पुत्र के रूप में भगवान का महान भक्त महाभागवत अम्बरीश महाराज जन्म लिए। नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, और ये अम्बरीश महाराज के विषय में भागवत के नवम स्कंद में आया है। ये अम्बरीश महाराज न केवल भारत अपितु समग्र पृथ्वी के राजा थे। दिल्ली के आसन पर बैठकर पूरी दुनिया को चलाते थे, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके अंडर में एक से एक देश और छोटे मोटे राजा महाराजा थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी वे क्या करते थे? कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा, कहते अपनी काया से और अपनी वाणी से और अपने स्वभाव से सभी कर्म भगवान को अर्पण करते थे। उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, उनका मन यदि यहां वहां दौड़ता तो एकमात्र भगवान के चरणों में जाकर खड़ा रहता। वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनकी वाणी यदि कुछ शब्द भी निकलते तो एकमात्र भगवत गुणानुवाद करने के लिए निकलते। करोर हरे मंदिर मार्ज नारदिशु, उनके हाथ यदि कुछ काम करते तो एकमात्र हरि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर मार्जन करने में। प्रश्न हो सकता है, इतना बड़ा राजा मंदिर साफ करता है? परंतु मंदिर साफ करना कोई छोटी बात नहीं है, संसार की सबसे बड़ी सेवा है। राजा होकर भी भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे और अपनी इंद्रियों को, कहते हैं अपनी इस इंद्रियों को, अपने इस त्वचा को भक्तों का स्पर्श करने में लगाए थे। मुकुंद लिंगा, कहते हैं अपनी आंख को भगवान मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में ने लगाए थे। अपने चरण को, महाराज अम्बरीश का चरण चलता तो तीर्थ या भगवान के मंदिर में जाकर रुकता। इस प्रकार से महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और राज कारोबार अपने मंत्रियों को सौंप दिया था। देखिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि राजा 2400 घंटा भगवान की भक्ति में लगा रहता था, प्रश्न होता है कि 2400 घंटा भगवान की भक्ति में लगने के बाद भी दुनिया का वहीवट कैसे करते होंगे? आज दुनिया का वहीवट की बात छोड़ दीजिए, एक कुटुंब का वहीवट करने वाले को रात को नींद नहीं आती है, बेचारा 12 घंटे गधे की तरह काम करता है, तब जाकर 2-4 लोगों का भरण पोषण कर सकता है। पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाला 24 घंटा भजन कर रहा है, कैसे? क्योंकि भगवान की कृपा। यदि हम भगवान के संपूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो फिर हमारे जीवन के कार्य भगवान करते हैं, भगवान के ऊपर। अब सौंप दिया सब बार भगवान तुम्हारे चरणों में, यदि ये सारा बार भगवान के चरणों में सौंप दिया फिर वह कार्य भगवान करते हैं। परंतु हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को सौंपते नहीं। यदि विश्वास हो जाए, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, परमात्मा का अंश होने के नाते हम भगवान के पुत्र हैं, वे क्यों हमारे कार्य नहीं करेंगे? वे परम पिता की बात छोड़ दीजिए, संसार का साधारण पिता और साधारण माँ अपने दूध पीते छोटे से बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को, मान लीजिए वह नीचे खेल रहा होगा बच्चों के साथ, माँ बुलाती है भोजन करने के लिए आओ, यदि वह बच्चा ना भी कहे फिर भी उनके माता पिता जबरदस्ती खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। यदि उसकी उसको सोना भी ना हो फिर भी जबरदस्ती सुलाएंगे। यदि उसे कपड़े न पहनना हो तो जबरदस्ती नए कपड़े ला कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बालक संपूर्ण अपने माता पिता को आश्रित होता है। इस संसार के साधारण माता पिता अपने आश्रित बालक का भरण पोषण करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो जो पिता के भी पिता, परम पिता के आश्रित यदि हम हो जाएंगे तो क्या वे हमारा भरण पोषण नहीं करें? अरे संसार में रहने वाले मूर्ख, पागल, पापी और चोरों का भी भरण पोषण हवा, पानी, सूर्य प्रकाश देकर करते हैं, तो उनका भजन करने वाला का भरण पोषण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, परंतु विश्वास होना चाहिए। शरणागति का एक लक्षण है विश्वास। विश्वास नहीं है हम, महाराज अमरीश को पूर्ण विश्वास था, इसलिए उनका काम भगवान करते थे, भगवान उनके काम की देखभाल रखते थे, बहुत सुंदर राज्य चलाते थे और नित्य निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आरती करना, भगवान के नाम का जप करना, फिर मंदिर का मार्जन करना, ये इसी काम में लगे रहते थे। अब एक दिन की बात, महाराज अमरीश की कितनी पत्नी थी? लगभग 100 पत्नी तो थी, ऐसा मुझे लग रहा है, लगभग 100 पत्नी थी महाराज अमरीश की, 100 पत्नी थी। परंतु एक दिन की बात, महाराज अमरीश के पास एक लेटर आया, एक पत्र आया, और वो पत्र किसी स्त्री ने लिखा था, दूर के देश में रहती थी, और स्त्री ने पत्र में लिखा कि हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, कृपया करके आप मुझे स्वीकार करें। अब राजा को तो ऐसी कई स्त्रियां मिलती हैं, वे थोड़ी ना स्वीकार करेंगे। और अमरीश महाराज ने सोचा कि ऑलरेडी 100 को लेकर रखा हूं और उसमें भी भजन में बाधा हो रही है, तो नई को लाकर क्या करना है। महाराज अमरीश ने पत्र लिखा कि आपका भाव बहुत अच्छा है, परंतु, और महाराज अमरीश ने यह भी सोचा कि मैं तो राजा हूं, ऐसे तो कई लोग आएंगे, अब ऐश्वर्या राय के साथ विवाह करने कितने लोग जाएंगे, तो क्या सबके साथ में कर लेगी? आते रहते हैं जो सुंदर होते हैं, जिसमें सामर्थ्य होता है, उनको ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं। राजा ने सोचा कि ऐसे तो लेटर आते रहते हैं, और मन में सोचा कि मैं राजा हूं, मेरी संपत्ति से प्रेम करते हैं लोग, इसलिए लेटर लिखा होगा। राजा ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास कोई समय बचता नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, पोस्ट कर दिया। स्त्री को लेटर मिला तो उन्होंने दूसरा लेटर लिखा कि राजन, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपके धन को प्रेम करती हूं, परंतु ऐसा नहीं है, आप धनी हो इसलिए मुझे आपके साथ विवाह नहीं करना है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो इसलिए मुझे आपके साथ विवाह करना है, और यदि मेरा विवाह और किसी के साथ हो गया तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कृपया करके आप मुझे स्वीकार करें। दूसरा लेटर जब राजा को मिला तब राजा ने सोचा कि ये तो भक्त है, और भक्त को इनकार करना बहुत बड़ा अपराध है, सामर्थ्य होते हुए भी इनकार करना, तो ये तो अपराध है। तो राजा ने सोचा चलो 100 है तो 101 सही, एक और बढ़ा देते हैं। राजा ने, अब राजा तो नहीं जा सकते हैं, राजा अमरीश ने अपनी तलवार सिपाही के साथ भेजा। पहले के जमाने में जो राजपूत है और जानते होंगे, होता था कि किसी भी स्त्री के साथ उस राजा की तलवार के साथ फेरा घुमाया जाए तो राजा के साथ विवाह माना जाता है। राजा अमरीश ने अपनी तलवार भेजी, तलवार के साथ वह अग्नि के प्रति फेरा पड़े और विवाह करके यह 101वीं पत्नी घर पर आ गई। घर पर आई, राजा ने उसे एक कमरा दिया, वहां पर वह रहने लगी, 101 पत्नी हो गई। अब ये 101वीं पत्नी जो थी, क्योंकि भगवान की भक्त थी, तो राजा रोज सुबह 4 बजे जगते थे और 4:30 की मंगला आरती करते थे, तो राजा 4 बजे जगे, उसके पहले ये नई पत्नी 3 बजे जग जाती थी, और 3 बजे जगकर राजा जिस मंदिर को साफ करके पूजा इत्यादि करते थे, 3 बजे जगकर उस मंदिर में आ जाती, उस मंदिर को साफ करने लगती और बहुत सुंदर भगवान को फूल माला हार इत्यादि पहना कर अपडेट कर देती। राजा आकर देखते, इतना सुंदर मंदिर सजा दिया, अब तो उसे साफ करने का, अब भक्त जो होते हैं मंदिर साफ करना ये कोई बहुत बहुत बड़ा बोझा नहीं मानते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, तो हमारे जीवन में होता है कि मंदिर साफ करना, भगवान को भोग लगाना कितना कष्ट होता है, कैसे भी करके लगा देते हैं, बोल देते हैं, हम सोचते हैं भगवान ने खा लिया होगा। अब भगवान की बात छोड़िए, इस संसार के छोटे मोटे प्राइम मिनिस्टर को भी यदि भोजन कराना हो तो कितना मान कितना भाव देना पड़ता है। आइए बैठिए खाइए, आपके लिए ही बनाया है, आप नहीं खाओगे तो हम दुखी हो जाएंगे, कृपया करके खा लीजिए, तब जाकर वो एक चीज खाएगा। आजकल का कोई बड़ा व्यक्ति जो जिसका समाज में नाम हो गया है उसे भी हमारे घर पर खिलाने के लिए बुलाना हो तो कितना कष्ट होता है। ये तो मंत्री का भी मंत्री, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ, ऐसे आप रख दोगे तो वो खा लेगा। इसके लिए भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम यो तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भाव भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, प्रेम होना चाहिए। भले में श्लोक नहीं आते हैं, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भाई आपके संस्कृत के श्लोक हम नहीं जानते हैं परंतु हमारा भाव यह है, आपके लिए बनाया है, कृपया करके आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाषा के भूखे नहीं है। और यदि भाषा आ गई तो बहुत अच्छी बात है, इसका अर्थ ही नहीं है जो संस्कृत आता है वे भूल जाए। तो प्रेम से, तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज भाव से प्रेम से सेवा करते थे। उन्होंने सोचा कि मेरा काम और किसी ने कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, एक दिन, दूसरे दिन भी 3 बजे जगकर इन्होंने सारा काम कर दिया, चौथे दिन भी कर दिया, पांचवे दिन भी, वैसे 15 दिन तक चला। महाराज अम्बरीश तो फ्री हो गए और खाली मन शैतान का कर भजन भक्ति छूट गए, क्या करे। राजा बहुत चिंतित हुए, टेंशन में आ गए। अब राजा ने सोचा एक काम करता हूं, जैसा मंदिर मेरे पास है वैसा ही मंदिर इसको बना देता हूं। फिर वो अपने मंदिर में सेवा करी गई, मैं मेरे मंदिर में करूंगा। तब राजा ने मिस्त्री को बुलाकर वैसा ही मंदिर, वैसा ही विग्रह, सेम राजा के मंदिर जैसा ही मंदिर अपनी पत्नी, ये जो 101वीं पत्नी थी, नई पत्नी, उसे अब उसके घर पे रख दिया। अब उनके घर पे मंदिर रख दिया तो ये रोज सुबह 3 बजे जग जाती थी और अपने मंदिर को साफ करके उनकी सेवा पूजा इत्यादि करती थी और राजा अपने मंदिर की सेवा करते थे। परंतु राजा अपने मंदिर की सेवा करने के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि चलो उनके घर पर मंदिर आया है तो उनके कृष्ण ने कैसा श्रृंगार किया होगा, उनके कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने होंगे, क्या भोग लगाया होगा, कैसा मंदिर है, कैसा सजाया होगा। तो राजा के मन में बहुत ये भक्तों का भाव होता है, तो राजा इस पत्नी के घर पर चले गए दर्शन करने के लिए। दूसरे दिन भी राजा उस पत्नी के घर पर गए, तीसरे दिन भी गए। वैसे राजा का रोज का शेड्यूल हो गया कि रोज इस पत्नी के घर पर जाकर दर्शन करना। अब वे जो पहले की 100 पत्नियां थी, ये सब पत्नी मीटिंग करके सोचने लगी कि राजा 1 साल में भी हमारे घर पर 1 बार नहीं आते हैं और कैसे जाएंगे। सॉरी, अम्बरीश महाराज को 1000 पत्नी थी, 1000 पत्नी। तो 1000 पत्नी ने सोचा कि अब एक राजा है और 1000 पत्नी है, एक दिन में 1 पत्नी के घर पर जाए तो 3 साल में 1 का टर्न आएगा, 365 दिन 1 साल में होता है, तो 3 साल में 1 पत्नी का चांस आएगा। तो ये सारी 1000 पत्नी मीटिंग करके सोचने लगी कि 3 साल में 1 बार आते हैं और कभी कभी तो 5 साल में भी 1 बार हमारे घर पर नहीं आते हैं और ये जो नई आई है उसी घर पर तो रोज जाते हैं। स्त्रियों में तो ये होता है, ब्रह्मा जी की कृपा है, स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। अब क्या करें, 3-3, 5-5 साल में हमारे पास 1 बार भी नहीं आते और यहां पर रोज जाते हैं, ऐसा क्या है इसके पास जिसके कारण इसके घर पर रोज जाते हैं। तो सभी गई, किसी एक जासूस को भेजा और जाकर पता चला कि राजा के घर पर जैसा मंदिर है वैसा मंदिर इसी के घर पर है, इसलिए राजा इसके घर पर जाते हैं। 1000 पत्नी ने मिलकर 1000 मिस्त्री को बुलाया, कल ही हमारे घर पर ऐसा मंदिर होना चाहिए। दूसरे दिन 1000 मंदिर सभी रानियों के घर पर और सभी रानियां आप तो भक्ति करने लगी, भगवान का श्रृंगार 3 बजे जगने लगी राजा के लोभ में। अब राजा ने सोचा कि अब तो सबके घर पर, तो राजा अपना काम बहुत जल्दी कर लेते थे और सुबह उठकर पहले इस पत्नी के घर पर, फिर दूसरी पत्नी, तीसरी, चौथी, सब पत्नी के घर पर जाने लगे। जैसे हम वृंदावन में, हमारे पास समय बहुत कम होता है और 5000 मंदिर वृंदावन में है, तो भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर हम दर्शन करते हैं। वैसे राजा भी सबके घर पर दौड़ दौड़ कर दर्शन करने लगे। और राजा के जीवन में जो थोड़ा बहुत समय बचता था, अब तो वह भी नहीं बचने लगा। तो राजा अब अपनी सभी पत्नियों के घर पर जाने लगे। जब राजा सभी पत्नियों के घर पर जाने लगे तो उनकी प्रजा, उनके देश की प्रजा सोचने लगी कि हम तो राजा को हमारे घर पर बहुत बार बुलाते हैं, हजारों बार उसको निमंत्रण देते हैं, फिर भी नहीं आते हैं, और अपनी पत्नियों के घर पर रोज रोज जाते हैं। ऐसा तो उनकी पत्नी क्या करती है जिसके कारण उनके घर पर रोज जाते हैं। सभी प्रजाओं ने मीटिंग करके किसी जासूस को भेजा तो पता चला कि ये पत्नियों के घर पर मंदिर है, इसलिए राजा जाते हैं। तो सभी प्रजाओं ने ऑर्डर दे दिया कि हमारे घर पर भी ऐसा मंदिर होना चाहिए। राजा के पूरे सारे देश में सभी भक्तों के, सभी लोगों के घर पर ऐसा मंदिर बना दिया। अब तो राजा की जिज्ञासा और बढ़ी। ये तो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राजा में भगवान की शक्ति का आवेश होता है। तो अब तो राजा अपनी पत्नियों के घर पर भी जाते थे और प्रजा में भी सबके घर पर जाने लगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। अब तो राजा पूरे देश के घर पर जाने लगे। अब बाजू के देश वाले विचार करने लगे कि राजा उस देश में सबके घर पर जाते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं आते हैं, वो देश वाले क्या करते हैं, चलो जाकर देखें। तो ये देश में सब लोग अपना मंदिर बनाकर उनकी सेवा करते हैं, इसलिए राजा उनके घर पर जाते हैं। तो बाजू के देश वाले ने भी सोचा कि हम सब हमारे घर पर मंदिर बनाएंगे। सब लोगों ने अपने घर पर मंदिर बनाया और राजा बाजू के देश में भी जाने लगे। तब दूसरे सब देशों ने सोचा कि हमारे देश में राजा कभी आए नहीं, ये देश में क्यों जाते हैं। तो उस समय पर इस भूमंडल में रहने वाले सभी, देश में रहने वाले सभी लोगों ने अपने घर पर मंदिर बनाया, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आरती और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। पूरी पृथ्वी राजा अम्बरीश के शासन में ये समग्र पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन गई। अब भक्तों मैं आपको प्रश्न करूं, ये पूरा भूमंडल, ये पूरी पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण का की भक्ति कर रही है, उसके पीछे कारण कौन बना? राजा की वह 101वीं पत्नी, वह स्त्री। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई स्त्री चाहे तो पूरी दुनिया को भक्त बना सकती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यदि कोई स्त्री चाहे तो पूरी दुनिया को भक्त बना सकते। अपने घर की बात तो बहुत दूर रही, हम टेंशन लेते हैं हमारे पति हमारे बच्चे कैसे, ये तो बनेंगे ही, पूरी दुनिया भक्त बन सकती है। परंतु भक्ति होनी चाहिए, स्त्री शक्ति बहुत महान शक्ति। स्त्री यदि चाहे तो पूरी दुनिया को भक्त बना सकती है, और स्त्री यदि चाहे तो पूरी दुनिया को मार भी सकती है, दुखी भी कर सकती है। रामायण ज्वलंत प्रमाण कई कई, पूरी अवध पूरी को रुला दिया कई कई ने। स्त्री ये देखिए, अम्बरीश महाराज की पत्नी ने सबको भक्त बना दिया, और उसी तरह एक स्त्री ने पूरी दुनिया को रुला दिया, वह कई कई भगवान को वनवास देकर। रामायण में वर्णन है सभी लोगों के आंख में आंसू, क्योंकि पर ब्रह्म जिसके सामने खेले हैं वे चले जाए जंगल में, कौन ठीक से रह सकता है, सब लोग रोने लगे। कैकेयी ने तो रुलाया, परंतु द्रौपदी ने तो सबको मरा दिया। स्त्री यदि चाहे तो सबको मरा भी। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में लाखों करोड़ों की सेना मर गई, जड़ क्या थी, केवल एक शब्द निकल गया, अंधा का पुत्र अंधा। शायद वह शब्द नहीं निकला होता तो महाभारत की युद्ध में वो युद्ध भूमि पर वह युद्ध नहीं हुआ। भक्त शास्त्र इतिहास प्रमाण है, स्त्री यदि चाहे तो पूरे संसार को सुधार सकती है, और स्त्री यदि चाहे तो पूरे संसार को बिगाड़ सकती है। सुधारने में भी स्त्री का हाथ है और बिगाड़ने में भी स्त्री का। आज पुरुष बालक बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसके पीछे स्त्री का हाथ है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। एक तो बेचारे माया के वश में होते हैं, ऊपर से मेकअप करना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, तो बेचारे ये लट्टू हो जाते हैं, ये बिगड़ जाते हैं। बिगाड़ने में भी इन लोगों का ही हाथ और सुधारने में भी स्त्री का ही हाथ, इसलिए जननी कहा जाता है। स्त्री जो है जननी है, इसलिए स्त्री के हाथों में बहुत बड़ा भार है। गुजरात में एक कहावत में कहा गया है, कहते हैं हे जननी, यदि पैदा करना है, यदि किसी बालक को पैदा करना है तो ऐसा बालक पैदा करना, या तो वे बहुत बड़ा दाता हो, या तो बहुत बड़ा शूरवीर हो, या तो बहुत बड़ा भक्त हो। और यदि भक्तों को पैदा नहीं कर सकती हैं तो उसे बांझ ही रहना चाहिए, जैसे सुमित्रा माता कहती। तो स्त्रियों का समाज है, कहना इतना ही है कि सबको उत्साह के साथ, प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यदि हम भक्ति करेंगे तो हमारे रिलेशन वाले जितने भी आजू बाजू में सब लोग भक्ति करेंगे। और यदि कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमारे पति पुत्र इत्यादि को भक्त बनाने के लिए, सास ससुर को भक्त बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ माताएं टेंशन भी लेते हैं कि हम भक्ति कैसे करें, हमारे आजू बाजू में सब लोग अभक्त पापी रहते हैं। उसके लिए प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे दृष्टांत है। ये हमारा बहाना है, भक्ति कैसे भी हो सकती है। भक्ति जैसे प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में रहकर भक्ति करते थे, तो हमारे आजू बाजू में रहने वाले असुर तो नहीं है, उससे तो अच्छे हैं बेचारे। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सब लोग कर सकते हैं, चाहे स्त्री को भक्ति के ऊपर जितना अधिकार है, पुरुष को जितना अधिकार है उतना ही स्त्री के ऊपर है। इसलिए इति पुंसार पिता विष्णु, ये विष्णु की भक्ति पुंसा, वहां पर जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पुंसा का अर्थ होता है, पुंसा का अर्थ केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री अपि, स्त्री भी भगवान श्री कृष्ण की। अरे स्त्री की बात छोड़ दीजिए, पुंसा अर्थात जीव मात्रस्य भक्ति, जीव मात्र, एक कुत्ता भी भक्ति कर सकता है। 500 वर्ष पहले शिवानंद सेन का एक कुत्ता भी भगवान के धाम में गया। भागवत के अष्टम स्कंद में एक हाथी ने भक्ति की भगवान के धाम, गजेंद्र ग्राह के मुख से बचकर भगवान के धाम। जीव मात्र भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भक्ति स्वतंत्र है, सबको उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, लगन के साथ और अभय होकर, बिना डरे, डरना नहीं चाहिए समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, निर्भय होकर भक्ति करनी चाहिए। हम लोग अभय चरण, ऐसी भक्ति विदान स्वामी का नाम अभय था, तो अभय की संस्था में रहकर निर्भय होकर भजन होना चाहिए, डरते हुए। सब लोग भक्ति कीजिए। श्री राधा गिरधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौरनिताय प्रभुपाद जी, आप सब पर कृपा बनाए रखें। आप सबको उत्साह, भक्ति, शक्ति, सुख, संपत्ति सब कुछ प्रदान करें। सब लोग सुखी होकर भक्ति करें, यही भगवान से प्रार्थना है। और आपसे यही आशा है कि आप इसी उत्साह के साथ यहाँ पर एकत्रित हो। मैं आऊंगा प्रत्येक वीक में एक बार, जरूर आऊंगा। ये तो कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ सकता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर कथा की थी वैसे ही कथा और जगह पर होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकता। तो मैं प्रति वीक में एक बार जरूर आऊंगा, आप लोग उत्साह के साथ आइए। और मान लीजिए कभी नहीं भी आ सका तो मन में उत्साह कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गीता और भागवत सुनने के लिए आए हैं, सुनाने वाले भले कोई भी हो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेरे अलावा कोई भी सुनाने वाला आएगा तो वे मेरे से महान ही होगा, ये सत्य बात है, ये विश्वास रखिए। इसलिए बिल्कुल आदर के साथ, प्रेम के साथ सुनना चाहिए। फिर भी हमारा आपके साथ एक प्रेम है, एक लगाव है, एक संबंध है, इसलिए मन में होता है कि लाल गोविंद प्रभु आएंगे तो अच्छा है। हमें भी मन में ऐसा होता है कि हमारे अपने श्रोता हो तो बोलने में बहुत आनंद होता है, और बाहर के लोग होते हैं तो सोच सोच कर, नाप तोल कर बोलना पड़ता है कि कहीं ज्यादा ना निकल जाए, कहीं कम ना हो जाए। अब यही प्रवचन मैंने करोड़ों अरबोंपति के बीच में किया था, वे लोग ने बहुत प्रॉब्लम उठा लिया कि आप ऐसा क्यों कहते हो, स्त्रियों को इतना क्यों कह रहे हो बांद्रा में। तो कुछ लोग होते हैं, परंतु यहाँ पर बहुत भाव है, प्रेम है, निश्चित भगवान की कृपा सब पर होगी। परंतु सब लोग लगे रहिए, हमने जो भगवान के नाम जपने का संकल्प लिया है, सब लोग माला करते हैं, कितने लोग करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, जय, सब लोग करते हैं, रेगुलर करते रहिए, जितना संकल्प है बिना छूटे। मान लीजिए यदि कभी किसी की छूट गई हो तो फिर से शुरू कर दीजिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखेंगे और अगले शनिवार को हम 7:30 बजे प्रारंभ कर देंगे। क्षमा चाहते हैं आपसे। हरे कृष्णा।